Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Snatas Tirtha, Snatam Tena Samast Tirtha Salile. ये उसके लिए बताया जा रहा है जिसका मन एक क्षण के लिए अपने स्वरूप में लग जाता है, परमात्मा में लग जाता है, उसको संपूर्ण तीर्थों के स्नान करने का फल मिलता है। अब मुझे लगता नहीं कि जो कुंभ में नहीं नहाना चाहते और उसके विकल्प खोजते हैं कि ऐसा कौन सा विकल्प हो जिसको कर लेने से कुंभ के नहाने का फल मिल जाए, तो मुझे लगता है उनके लिए यही सबसे सरल उपाय है कि यदि आपने एक क्षण के लिए अपने मन को उस परमात्मा में लगा दिया तो नासिक में नहाओगे तो हरिद्वार का छूट रहा है, क्षिप्रा का स्नान आ जाएगा अगले साल, उसमें भी जाना पड़ेगा। हम ये नहीं बोलते कि आप ध्यान लगा के मत जाओ, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी वहां पर रह रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, लेकिन जब विकल्प आप चाहते हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं है अथवा इच्छा नहीं है जाने की, तो वे लोग कम से कम एक क्षण के लिए अपने मन को किसमें लगा देवे, परमात्मा में। एक क्षण जिसको लगाने का अभ्यास हो गया तो फिर धीरे धीरे भगवान स्वयं कह रहे ना, अभ्यास योगे न ततो मामिच्छा तुम धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा ही मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखे। अभ्यास योग बहुत बड़ा योग है और आपका अब तो स्वभाव बन गया, हमें लगता है इसमें हम सत्संगी की प्रशंसा भी कर रहे हैं और सच्चाई भी है। कुछ लोग बोलते हैं महाराज जलपान मिले न मिले, भोजन समय पर मिले न मिले, लेकिन ये सत्संग की खुराक 365 दिन लगातार आंधी हो, बरसात हो, ज्वार भाटे आए, समुद्र के किनारे भी अलर्ट कर दिया जाता है जब कोई खतरा हो, यहां कोई ना आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रेमपुरी का सत्संग बंद होता होगा कि आज नहीं होगा। ये तो 365 दिन आपके लिए उपलब्ध है। जैसे रोज स्नान करना, भोजन करना जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए, ये आप लोगों के लिए एक मानसिक खुराक है। सवेरे सवेरे आप आते हो, अमूल्य समय निकाल करके, आपके पास सारी सुविधा है, सो सकते हो, कौन मना करता है, नहीं आओगे तो कौन आपको बोलता है आना पड़ेगा। लेकिन ये मुमुक्षु का लक्षण है, जिज्ञासु का लक्षण है, और ये सब वृत्ति तब बनती है जब भगवत कृपा हो, नहीं तो बहुत मुश्किल काम है, एक दिन आओगे, दो दिन आओगे। अच्छा, ये प्रमाद एक ऐसी चीज है, एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या होगा, तो दूसरे दिन फिर यही होता, आज भी नहीं जाएंगे तो क्या होगा, और करते करते तो अब नहीं जाएंगे तो क्या होगा, ऐसा हो जाता है, और नहीं कुछ भी हो जाए हमें जाना ही है, ऐसा जब संकल्प दृढ़ होता है, नियम में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। एक गांव के बाहर था शिवालय, और गांव के कुछ लड़के वहां जाते थे जो संस्कारी नहीं थे, मंदिर में पत्थर फेंके, कुछ फेंके, दर्शन तो करे रहे, ऊपर से भगवान का अपमान करे। उसमें एक ऐसा भी लड़का था, उसने मन में सोच लिया पत्थर तो फेंकना लेकिन रोज फेंकना है। और एक दिन इतनी बारिश आई, पानी भर गया होगा गांव में, लोग गए नहीं, लड़के वो गया, बोले मुझे तो ये नियम पूरा करके ही आना है। गया केवल किसके लिए, पत्थर फेंकने के लिए, दर्शन करने के लिए नहीं। भगवान प्रकट हो गए, बोले तू नियम का बड़ा पक्का है भाई, हा? ऐसे बारिश में भी अपने को कष्ट में डाल के आए, तो नियम में इतनी ताकत, इतनी शक्ति है। एक दवाई नियम से न लो ना तो बीमारी ठीक नहीं होती, 5 दिन का कोर्स है तो पूरा करना पड़ेगा, और ब्रह्म विद्या का कोर्स कैसा है, ये लाइफ टाइम है। मोबाइल में आप क्या चाहते हो, लाइफ टॉक टाइम, और 5-10 साल का ही होता है तब भी उसको लाइफ टाइम बोल देते हैं। आजीवन कारावास किसके लिए, बदमाश को सुधारने के लिए, वैसे ये जो हम लोगों के लिए है ब्रह्म विद्या का अभ्यास कैसा चाहिए, आजीवन बस इसको दिमाग से निकाल दो, कितने दिन करना है, कब तक करना है। स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिने दत्ता च सर्वावनी, जिसने एक क्षण के लिए अपने मन को उस परमात्मा में लगा दिया, उसको संपूर्ण पृथ्वी के दान करने का फल मिलता है। ये कितना बड़ा फल है, आपको समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिल गया, संपूर्ण पृथ्वी भूमि दान करने का भी फल मिला। दत्ता च सर्वा अवनी, अवनी मतलब पृथ्वी, दत्ता उसने दे दिया, जिसने एक क्षण के लिए अपने मन को उसमें लगा दिया। त्रैलोक्यस्य समुद्धृता स्वपितरः, तीन लोक, त्रैलोक्य यहां ले लो 21 पीढ़ी समझ लो, और तीनों भुवन उसमें जितने भी आ गए ब्रह्मा विष्णु महेश, उन सब की आराधना करने का भी फल मिल जाता है। किसको? जिसने अपने मन को एक क्षण के लिए उस परमात्मा में स्थिर कर दिया। स्थिर करने वाली बात है। त्रैलोक्यस्य समुद्धृता स्वपितरः, अपने पितरों का भी उद्धार कर दिया, 21 पीढ़ी ले लो सात्रिका 21। त्रैलोक्य पूज्योप्यसु, तो ये दत्ता च सर्वावनी, और त्रैलोक्यस्य समुद्धृता स्वपितरः त्रैलोक्य पूज्योप्यसु, यज्ञानाम च कृतम सहस्रम, संपूर्ण यज्ञों को करने का भी फल उसको मिल जाता है। एक एक यज्ञ कहां तक करोगे, न तो इसी सामग्री मिलना, इसे देश काल अनुकूल होना, सब कुछ कठिन है आज के युग में, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यज्ञानाम च कृतम सहस्रम, हजारों यज्ञ करने का फल मिलता है। अखिला देवाश्च, संपूर्ण देवों की पूजा करने का फल मिल जाता है, पितरों के उद्धार करने का फल मिलता है, और यहां तक कि दुनिया में मन लगाओगे तो लोग क्या कहेंगे, बात तो करता है किसकी, ये मन है ना, मन लगा करके विवेक चूड़ामणि में आया ना, हम लोग द्विविधा में रहते हैं, और ये तो प्रसिद्धि भी है कि दो नाव में पैर रख करके नदी पार नहीं कर सकते। हम लोगों के अभी क्या हाल है, क्या चाहते हो आप, घर की सारी व्यवस्था ठीक रहे, शरीर का पूरा पूरा ख्याल रखा जाए, और साथ में आगे इसमें आने वाला है देह आदि के माध्यम से ही उस परमात्मा को जानना है, और ये तो आप पहले भी सुने हो, शरीर पोषणार्थी सन, शरीर का पोषण करता हुआ, शरीर से संबंधित जो भी चीजें सब आ जाएंगे इसमें, क्योंकि उस दिन बताया था ना, वित्तात् पुत्रः प्रियः पुत्रात् पिंडात् पिंडः पिंडः पिंडात् तथेन्द्रियम्, और इंद्रियेभ्यः प्रियः प्राणः प्राणात् आत्मा प्रियः परः, ये क्रम है। वित्तात् पुत्रः प्रियः, धन से धन की अपेक्षा कौन प्रिय है, पुत्र। बीमार हो गया, इलाज कराने में आप खर्चा करोगे, वहां पैसे की नहीं देखोगे, इसलिए वित्तात् पहले तो धन प्रिय था, लेकिन पुत्र के सामने धन गौण हो गया, पुत्र की प्रधानता हो गई। पंचदशी आप पढ़ोगे, अंतिम अंतिम में आया है सब विस्तार से, ब्रह्मानंदे आत्मानंद प्रकरण में गौण आत्मा, मिथ्या आत्मा और मुख्य आत्मा करके अलग अलग प्रतिपादन किया है। तो गौण आत्मा, मिथ्या आत्मा, मुख्य आत्मा मोटे मोटे समझ लो, फिर जब आगे आएगा प्रसंग विचार कर लेंगे। शरीर से भिन्न वस्तु में जो आत्मत्व बुद्धि होती है उसको गौण आत्मा कहते हैं, और शरीर को जो आत्मा मानते हैं ये ज्ञान होने के बाद मिथ्या साबित होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मिथ्या आत्मा। और मुख्य आत्मा तो मुख्य आत्मा है ही, शुद्धात्मा कह लो मुख्य आत्मा कह लो, ये दो आत्मा में उतार चढ़ाव होता है। गौण आत्मा तो सुस्पष्ट है कि अपने से भिन्न है, फिर भी हम लोगों का इतना अध्यास है उसमें, बेटा तुमने खा लिया तो समझ लो मैंने खा लिया, तू यदि प्रसन्न होता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, और बेटा कह दे भाई ठीक है पिताजी अब खाने का झंझट आप मत करो, आपके बदले मैं ही खा लिया करूंगा, तब आप क्या कहोगे? कैसा आदमी है वो, तो केवल अध्यास करते हो मानते हो, एक दिन रह भी लोगे भूखे, चलो कोई बात नहीं आज इसने खा लिया कोई बात नहीं, लेकिन रोज रोज हो सकता है क्या? तो अपने से सर्वथा जो भिन्न दिखाई देवे उसमें जो आत्मत्व बुद्धि होती है तो ये सब उसमें आ जाएंगे, पुत्र मित्र कलत्र धन संपत्ति ये सब के सब गौण आत्मा के अंतर्गत आते हैं। शरीर पोषणार्थी सन, इस तरह से मिथ्या आत्मा को आत्मा मानता हुआ फिर जो मुख्य आत्मा है उसको पाने की जो कोशिश करता है, यह आत्मानम दिदृक्षति द्रष्टुम इच्छति देखने की इच्छा करता है। ग्राहम दारुधिया, जैसे नदी के किनारे खड़े हो गए नाव की प्रतीक्षा करते रहे, नाव वाला तो दिखा नहीं, और इतने में एक बहुत जबरदस्त मगरमच्छ आया, उस मगरमच्छ के ऊपर बैठ करके नदी पार कर सकते हैं कि नहीं? कभी धोखे से बैठना मत, यहां पर हम लोग वही कर रहे हैं, मगरमच्छ के ऊपर बैठकर जैसे नदी पार करना असंभव ही है, असंभव सा नहीं सर्वथा असंभव है, ठीक उसी प्रकार से ये जो हम लोगों का मन है यदि अनात्मा ग्रही बनेगा, आत्मा में अनात्मा में आग्रह वाला बनेगा तो किससे दूर होंगे? आत्मा से। और आत्मा की तरफ यदि आपको बढ़ना है तो हमारे आचार्यों ने पूरी व्यवस्था बनाई है किस तरह से साधक को लगना चाहिए, तो ये पंक्ति लिख लो याद करने के लिए, परमात्मा की उपासना करने का तरीका बता दिया, अनात्मा दर्शने नैव परात्मानम उपास्महे, अनात्मा अदर्शने न एव, अनात्मा के अदर्शन ही परमात्मा का दर्शन है। जिस जगत को हम लोग आंखों से देख रहे कान से सुन रहे इसको यदि आप आत्मा के रूप में देखो तो आपको फिर अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, और यदि आपको अनात्मा के रूप में दिखाई देवे तो इसको देखने की इच्छा मत करो। दर्शन जो बोलते हैं ना, दर्शन का मतलब क्या होता है? दर्शन का मतलब होता है ज्ञान, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फिलोसफी बोलते हैं, बड़े दार्शनिक हैं, तो दार्शनिक का मतलब ही होता है ज्ञानी। दृश्यते ज्ञायते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा जाना जाए जिसके द्वारा देखा जाए जो परमात्मा का बोध करावे वो दर्शन है, वेदांत दर्शन, सभी दर्शन ही तो नाम रखा है, षड दर्शन द्वादश दर्शन, उसमें आस्तिक छह दर्शन है छह नास्तिक दर्शन है, तो ये हमारे थे कांदीवली वाले महाराज जी, द्वादश दर्शन कानन केसरी, बारह दर्शनों के शेर केसरी, कानन केसरी, कानन मतलब जंगल, बारह दर्शन रूपी जंगल के वो क्या थे? शेर थे। ऐसा नहीं कि किसी दर्शन में उनकी गति न हो, हम लोग तो एक वेदांत दर्शन भी तैयार कर ले तो बहुत है, बाकी दर्शन सांख्य दर्शन योग दर्शन न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन, फिर उधर जैन दर्शन बौद्ध दर्शन, बौद्धों के चार वेद वैभाषिक माध्यमिक योगाचार सूत्रांतिक, क्या क्या याद करोगे? बस अपने तो इतना ही काफी है कि असि ब्रह्मा और तुसी ब्रह्मा, हम भी ब्रह्म और यहां जितने भी बैठे हैं सबके सब क्या है, इसलिए बोलते हैं नमो ब्रह्मण्य देवाय, हे ब्रह्म आपको नमस्कार है। आचार्यों की सरलता देखोगे ना, मधुसूदन सरस्वती जी सिद्धांत बिंदु में अंतिम में मंगलाचरण में लिखते हैं, यदत्र सौष्ठवम किंचित तद गुरु रेव मे नहीं। यहां पर जो जो अच्छी चीजें हैं सब वो गुरु जी के हैं, मेरे नहीं है। और यदत्र असौष्ठवम किंचित तत् ममैव गुरोर नहीं, जो भी इसमें खराब चीजें हो सब मेरे हो, गुरु जी के नहीं है। यह है आचार्यों की सरलता। हम यदि थोड़े आचार्य बन जाए, विद्वान हो जाए, तो हम गुरु को ही चुनौती देने लगते हैं। और गुरु तो गुरु ही रहेंगे ना, चेला चेला ही रहेगा, बेटा बेटा ही होगा, बाप बाप ही होगा। जितने भी शीर्षासन कर ले, बेटा बाप नहीं बन सकता और चेला गुरु नहीं हो सकता। हाँ, अब गुरु भी महान हो, जैसे बोलते दुनिया में सर्वत्र विजय प्राप्त करने की इच्छा रखो, लेकिन पिता को पुत्र से हारने की इच्छा रखनी चाहिए और गुरु को शिष्य से हारने की ही इच्छा रखनी चाहिए। उसमें एक आनंद है, वाह मेरा चेला मुझसे भी आगे निकल गया, मेरा बेटा मेरे से भी आगे निकल गया। बेटे के साथ कंपटीशन करोगे, चेले के साथ प्रतियोगिता करोगे, लोग क्या कहेंगे? वो तो हंसेंगे, अरे अपने ही चेला है, आगे जा रहा है, तो आप उसको आशीर्वाद दो, उसके लिए शुभकामना करो, पुत्र है आशीर्वाद दो। तो ये आचार्य की सरलता इतनी है, मधुसूदन सरस्वती जी ने ऐसा लिखा है, यदत्र असौष्ठवम किंचित और यदत्र असौष्ठवम किंचित, जो उसमें अच्छाई हो गुरु जी की है और जो खराब चीजें वो सब मेरे हैं। एक बार एक महात्मा का ऐसे नाम था, हमने कहा महाराज आपके नाम के कई लोग मिल जाते हैं, हमको भ्रम हो जाता है कि ये आप हैं कि और हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, वो विनोदी स्वभाव के, बोले कि जहां अच्छा अच्छा काम हो वहां आप मेरा नाम समझ लेना, जहां खराब काम हो उसमें दूसरे का नाम लगा देना। तो ये तो कहने वाली बात है, और ऐसी इच्छा भी हम लोगों की रहती है कि अच्छे काम में हमारा नाम हो और खराब में दूसरे का नाम आ जाए। तो ये जो शरीर पोषणार्थी सन के द्वारा मन एक है, इस मन को परमात्मा में लगाए बिना हमारा कल्याण हो नहीं सकता, जिसके लिए शास्त्र में इतनी प्रशंसा की गई कि संपूर्ण पृथ्वी के दान करना, समस्त तीर्थों के स्नान करने का, हजारों यज्ञ करने का, समस्त देवी देवताओं के पूजन करने का, पितरों के उद्धार करने का, और यहां तक कि वह स्वयं भी तीनों लोक में पूजित हो जाता है, पूज्य दृष्टि से देखा जाता है उसको। त्रैलोक के पूज्योप्यसौ यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्। यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि, एक क्षण के लिए भी लग जाए, स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्, असंप्रज्ञात समाधि में जाने से पहले। वो समाधि हम लोग लगा पाएंगे कि नहीं? लय विक्षेप रहितम मनः कृत्वा सुनिश्चलम यदा यात्यमनी भावम तदा तत्परमं पदम तावन मनो निरोद्धव्यम हृदि यावद गतक्षयम एतद् ज्ञानम च मोक्षश्च शेषास्तु ग्रंथ विस्तरः। ज्ञान किसका नाम है, मोक्ष किसका नाम है, ये यदि आपने समझ लिया तो बाकी तो ग्रंथों का केवल विस्तार करना है। जैसे पंचदशी में आता है, नानुध्यायान बहुन शब्दान वाचो विगलापनम ही तत्, बहुत सारे शब्दों के ध्यान करने की जरूरत नहीं है। अभिज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, विज्ञातेपि परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। जैसे संस्कृत व्याकरण में आता है कि कौमुदी यदि आयाति वृथा भाष्य परिश्रम, यदि आपने कौमुदी पढ़ लिया तो भाष्य में परिश्रम करना बेकार है, और कौमुदी यदि ना आयाति वृथा भाष्य परिश्रम, और यदि कौमुदी नहीं आई तब भी भाष्य में परिश्रम करना बेकार है। वैसे यहां पर भी लिखा, ये विवेक चूड़ामणि में, अभिज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, यदि आपने उस परम तत्व को नहीं जाना तो अनेक शास्त्रों के अध्ययन करना भी बेकार है। और विज्ञातेपि परे तत्व, यदि आपने उस परम तत्व को जान लिया तो भी शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। बाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम, वैदुष्यम विदुषाम तदवद भुक्तये न तु मुक्तये। हाँ, बढ़िया प्रवचन करेंगे, अच्छे भंडारा खाने को मिलेगा। महात्मा लोग मजाक करते, सिर मुड़ाई तीन गुण मीठे सिर की खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। ओम नमः पार्वती पते हर हर। आप लोग समाधि में चले गए क्या? यही रहना भाई, कहीं जाना मत, समय हो गया है। एक अच्छी बात सुना देता हूं, एक दृष्टांत आप लोग सुनते ही है। जो हमारे पास ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय आदि मन के द्वारा संचालित होते हैं तो ये हमारे सेवक, और इसका जो मालिक है मन, वो स्वयं गड़बड़ करने लगा। नदियों के स्वामी है समुद्र, यथा नदी नाम प्रभव समुद्र, और आहुतियों के स्वामी है अग्नि, यथा आहुति नाम प्रभवो हुतासना, और देवताओं में श्रेष्ठ माने गए भगवान विष्णु, वैसे ही इंद्रियों के स्वामी कौन है? मन। मनस्थानी इंद्रियाणि, मन को भी इंद्रिय इसने कह दिया कि ये इंद्रियों के स्वामी है। अंतःकरण का भेद करते हो, ये जो मन है, मन लगा करके और अनमने ढंग से, अनमना ढंग बोलते हैं ना, अनमना का मतलब क्या होता है? अर्धमना। मन तो लगाया लेकिन ढंग से नहीं लगाया, कभी आया किसी ने कहा तो कर दिया, या किसी को देखा देखी कोई कर रहा है चलो हम भी कर लेते, इस तरह से करने वाले वही हाल है जो दृष्टांत आप सुने हुए हो। कौन था? एक मदारी था ना, मदारी, डमरू बजाना, साथ में पांच बकरियों को रखता था और पांच बंदर भी थे, बंदरों को नचाता था और उससे अपनी आजीविका चलाता था, उसका गुजारा चलता था। तो रास्ते में एक दिन जा रहा था जब, तो एक जगह कोई विश्राम के लिए पेड़ के नीचे बैठे थे संत। महात्मा जी ने कहा, भाई ये सब क्या है? बोले, महाराज मैं तो मदारी हूं, नचाता हूं, नाच दिखलाता हूं, गुजारा करता हूं। अरे भाई जरा हमें भी दिखला। अब कहता है, नहीं नहीं आपको क्या देखना, अरे दिखाओ तो सही। उसको लग रहा था फ्री में देख लेंगे, कुछ देंगे नहीं। फिर मन में आया, चलो बाबा जी क्या पता कोई जड़ी बूटी दे दे, तो उसे दिखाया। उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा खेल दिखाया तुमने, अब तुमको भी तो हमें कुछ देना पड़ेगा, तो ऐसा कर थोड़ी देर के लिए तुम आंख बंद कर, और जब तक मैं न बोलूं तब तक खोलना मत। 10-15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, कहीं नहीं रहे आंख खोलने के लिए, उससे रहा नहीं गया। खोला तो देखता है बाबा जी भी गायब, बकरी भी गायब, बंदर भी गायब, डमरू भी गायब। बोले, तो अच्छा खेल दिखाया हमने, हमारी आजीविका ही चौपट कर दिया, लगता है इन्होंने मेरा खेल सीख लिया, अब ये स्वयं कमाएंगे, इसने सारी चीज गायब कर दी। बड़ा निराश होकर के चल रहा था आगे आगे, दो चार कदम चला नहीं होगा कि इतने में उधर से लोग आ रहे थे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हाथी अपनी सूंड में माला ला करके और उसी मदारी के गले में डाल दिया। वहां की प्रथा ऐसी थी कि राजा जब गुजर जाए तो उसके बाद हाथी के सूंड में माला डाल देते थे, और वो जिसको पहना देवे उसी को राजा मान लिया जाता था। अब उसके मन में आया कि देखो हमने थोड़ा सा खेल दिखाया तो बहुत जबरदस्त जड़ी बूटी मिली, राजा बनने को मिल गया, और क्या चाहिए। लेकिन स्वभाव से तो था मदारी, राजपाट में व्यस्त हो गया, उसको पता ही नहीं कि मैं पहले कौन था, अभी क्या हूं, आगे फिर क्या होना है। जब थोड़े दिन के बाद पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया तो अभी वाला मामला तो था नहीं कि पार्लियामेंट में बैठे बैठे आप लड़वाते हो, स्वयं लड़ने नहीं जाते हो, और जीतने के बाद बोलते मैंने जीता। वहां तो राजा को भी लड़ने के लिए जाना पड़ता था। तो मंत्रियों ने कहा, महाराज अब युद्ध छिड़ गया, चलना पड़ेगा, था तो मदारी ना। बोलता है, मुझे भी जाना पड़ेगा। बोले, आपके गए बिना होगा कैसे, आप तो हमारे राजा हैं। अब बड़ा दुखी हुआ मन ही मन, सोचा क्या होगा, युद्ध में मारा जाऊंगा, बिना मतलब के राजा बन गया। चलो अब लड़ना तो पड़ेगा ही, पीछे भी नहीं हट सकते। जब जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते में वही दृश्य जहां पर वो बाबा जी मिले थे, मदारी का जो खेल दिखाया था वो जगह देखते वही बाबा जी भी बैठे हुए दिख गए। अब उसको थोड़ा बल आ गया कि हो ना हो, देखो इन्होंने कृपा की तो राजा बना दिया, आज भी थोड़ा इससे आशीर्वाद ले लूं तो लड़ना न पड़े, लड़े बिना अपना काम हो जाए, या लड़ना भी पड़े तो जीत जाऊं, इस भावना से हो गया। बोले महाराज कुछ कृपा करो। बोले अच्छा आंख बंद करो भाई, ध्यान लगाओ। लगाया तो थोड़ी देर में वही बंदर, वही बकरी, गाजे बाजे मंत्री सब गायब, जो मदारी का कपड़ा था वही कपड़ा भी आ गया। बोले महाराज मैं तो आपको केवल बोल रहा था युद्ध में विजयी हो जाऊं, आपने तो मेरा राजपाट ही छीन लिया। उन्होंने कहा देखो थोड़ी देर के लिए तूने मुझे खेल दिखाया, इसलिए हमने भी खेल दिखा दिया। ये मदारी की तरह जो जीवात्मा का हाल है, मन लगा करके तो खेल दिखाया नहीं था, कैसे दिखाया था, अनमने। चलो कह रहे क्या पता कुछ हो जाए, ये जो हम लोग मन लगाते हैं, भगवान को मानते भी हैं और कभी कभी मन में जब आपका निश्चय डगमगाने लग जाए, और निश्चय का मतलब है निष्ठा, निश्चय मतलब निष्ठा, निःशेषेण चयनम, जो आपको चयन करना था वो आपने चुन लिया, जब तक आपका चुनना बाकी है बाकी रहेगा तब तक उसको निष्ठा नहीं कह सकते। निष्ठा का मतलब है स्था गति निवृत्तो से निष्ठा शब्द की निष्पत्ति होती है व्याकरण के हिसाब से, जहां पर गति की निवृत्ति हो जाए, चलना बंद हो जाए कि जो मुझे प्राप्त करना था वो मैंने प्राप्त कर लिया। अभी लोग घबरा जाते हैं, कई बार लोग बोलते हैं महाराज आप भागवत भी करते हैं, पुराण की भी कथा करते हैं आप, तो हमने कहा कोई अपराध करता हूं क्या। हमारे आचार्य हैं श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम, श्रुति स्मृति और पुराणों के आलय हमारे आचार्य। आचार्य दंडी थे, लोग बोलते कर्म के विरोधी थे, उनके जैसे भक्ति करने वाले, उनके जैसे कर्म करने वाले कोई नहीं हुआ। यमुनाष्टक, गंगाष्टक, नर्मदाष्टक जो आप पढ़ो ये सब आचार्य की कृति है, वो भला कर्म के विरोधी उपासना के विरोधी कैसे हो सकते हैं। हम यदि नहीं समझ पाए तो इसमें हमारा ही दोष माना जाएगा, उनके ऊपर हम दोष नहीं लगा सकते। तो जो बड़े बड़े ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते उन लोगों के लिए ये जो दशश्लोकी है एक पाथेय है, इसमें बहुत गहन चिंतन किया है। तो ये जो हम लोगों का मन है थोड़ा बहुत भी अनमने ढंग से भी लगाते हैं तो एक मदारी को इतना बड़ा फल मिलता है, तो हम लोग भी एक तरह से मदारी ही हैं, अपने कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा खेल खेल रहे हैं, आजीविका हमारी चल रही है, लेकिन यदि इसी को हम थोड़ी देर के लिए परमात्मा की तरफ लगाते हैं, उनको ये खेल दिखाते हैं, तो उनकी इतनी बड़ी कृपा हो जाएगी कि हम हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, हुए हुए हैं। जो अभी नहीं है, नहीं सा लग रहा है, वो ब्रह्मलीन हो जाते हैं ना, बोलते हैं तो ब्रह्मलीन का अर्थ वहां शंका होती है कि ब्रह्म हमें लीन होता है मानोगे तो आधार आधे भाव बनेगा, द्वैत की आपत्ति आ जाएगी। तो ब्रह्मलीन का अर्थ कर दिया ब्रह्मणी लीनम इव, ब्रह्म में लीन की तरह होता है। कैसे, पानी में पानी की तरह जैसे मिलता है, पहले बता दिया। तो जल में जल की तरह से मिलना, अग्नि में अग्नि की तरह से मिलना, वैसे जीवात्मा को परमात्मा में मिलना समझ लेना चाहिए। अब बाकी जो विषय है आगे जब समय होगा उसमें फिर इसका विचार किया जाएगा, आज यहीं पर इसको विश्राम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमपुरी अध्यात्म भवन विद्या भवन में आने वाले सभी श्रोतागण, मातृशक्ति एवं समस्त दृष्टिगण सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबुलनाथ महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, आज श्रावण के सोमवार भी है इसलिए भगवान के चरणों में अपनी बाग पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। हरिओम।
हरिओम। हम सबकी ओर से, स्वामी प्रेम प्रिय आश्रम ट्रस्ट की ओर से और महिला मंडल की ओर से स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। स्वामी जी ने सुबह और शाम दो टाइम सुंदर प्रवचन दिया, उसके लिए खूब खूब आभार, खूब खूब अभिनंदन। अगले साल स्वामी जी 1 मई से 20 दिन तक आने वाले हैं और उन्होंने संबद्ध दिए, उसके लिए और धन्यवाद और फिर से चरणों में वंदन।